તારીખ 2/10/1990 શ્રી પદ્માનંદી પંચવિષ્ટિકા ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 56.
શોકમ પરમ પિતૃદો પૂર્વોપાર્જિત અપને કર્મો કે દ્વારા જો મરણ કા સમય નિશ્ચિત હો ગયા હૈ ઉસી કે અનુસાર પ્રાણી મરતા હૈ આગે ના પીછે નહીં મરતા એસા જાણકર ભી આત્મીય મનુષ્ય કે મરને પર વિજ્ઞાનીજન કૌ ભી શોક કરતે હૈ તથા નાના પ્રકાર કે દુઃખો કો आगे सभी मनुष्य के मरण का समय है वो निश्चित होता है
जी।
के लिए तो किसी का भी देह छुटना आगे या पीछे नहीं होता, एक समय के लिए कोई आगे पीछे नहीं होता। जैसे कोई मनुष्य बड़ा राजा है तो और इनके राज्य में सब सुखी है, खुद ही लौकिक रूप से खुद ही सुखी है क्योंकि राजा है और इनकी प्रजा भी सुखी है लौकिक रूप से, तो चाहेंगे तो वो युग युग जीवो। क्या कहेंगे कि हमारे जो राजाधिराज हैं वो युग युग जीवो, ऐसा गुणवान सुखी करने वाले प्रजा को ऐसा राजा कहाँ मिलता है। लेकिन एक समय वो अधिक जिंदा रहेगा एक विश्व में नहीं होने वाली चीज है, नहीं बनने वाली। वैसे कोई मनुष्य मृत्यु के पहले बहुत पीड़ा से, शरीर की वेदना से बहुत दुखी हो, इतना दुखी हो कि देखने वाला देख नहीं सके, उतना दुखी हो और खुद ही चाहे कि ऐसे दुख में रहना इससे तो मर जाना अच्छा है, लेकिन एक समय पहले भी वो मर नहीं सकता, न एक समय पीछे मरना होता है न एक समय पहले मरना होता है। किसी के चाहने से कोई फर्क पड़ता है, स्वयं के चाहने से या किसी के चाहने से कोई फर्क पड़ता है, ऐसा मृत्यु के विषय में नहीं बनता। तो खुदकुशी कहते हैं आत्मघात करते हैं, इसमें कोई ऐसी भी बात नहीं है कि वो स्वयं चाहा इसीलिए मर गया, अपनी इच्छा अनुसार वो अपने काल में मरा है वो बात भी गलत है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ऐसा आदमी मर सकता है, खुद चाहे तब जिंदा नहीं रह सकता लेकिन मर तो सकता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होता। एक समय भी कोई आगे पीछे नहीं मर सकता, इसलिए मरण के पीछे जो शोक होता है दुख होता है ये करने लायक नहीं है। पंच पंचाशत अधिकार है, इसलिए देह का रहना स्वभाव से ही अनित्य है और इसका निश्चित समय है, या तो पूर्व उपार्जित आयु कर्म के अनुसार उनका मरण समय निश्चित हो गया है। स्वकर्म कृत काल कलात जंतुस्तत्वेव याति मरणम, जंतु मैंने जीव तभी ही मरता है न पूर्व पश्चात, न पहले मरता है न कभी पीछे मरता है, निश्चित काल में ही आयु पूरे होते ही उसका देह छूट जाता है, उसको मृत्यु कहते हैं। देह से आत्मा अलग हो जाती है। मृत्यु में न तो कोई परमाणु का नाश होता है, न ये जीव का विनाश होता है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं लौकिक व्यवहार में। ये तो मात्र देह से आत्मा का अलग होने का एक समय है, निश्चित समय है, जहाँ इस देह से आत्मा अलग होने की घटना घटती है। इसके सिवा कुछ नहीं है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार और जगह चले जाती है, और ये पंचभूत के देह है परमाणु बिखर जाते हैं, चाहे वो इसको खंडे में डाल दें या चाहे अग्नि से जलाएं, लेकिन ये परमाणु परिवर्तन हो करके ऐसे तो कोई मरने को छुए नहीं, लेकिन ये परमाणु परिवर्तित करके आहार में आ रहे तो मिठाई बन करके रस से खावे, खावे नहीं रस लेकर के खावे, देखते ही मुंह में पानी आने लगे। देखिए क्या भ्रांति है जीव की, कभी तो सोचा नहीं, खाते वक्त कभी सोचा नहीं, तो परोसा था कहाँ से परमाणु आए होंगे, जो अपने थाली में आए वो कहाँ से आए होंगे। वर्तमान पर्याय पर विहार में होता है, क्या होता है वर्तमान अवस्था पर व्यामोह होता है, लेकिन एक दफे वही परमाणु को वो छूना भी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता। ऐसा होता है कभी होता
है इस प्रश्न में इस क्या कहना चाहते हैं परमाणु मतलब कैसे वो तो भूमि में विलीन हो गया, नाग बन गई, वो परमाणु कैसे क्या गए, वो परमाणु कैसे आ गए इधर,
वो परमाणु कब से कहाँ जाता है क्या पता चलता है, कोई वो भी एक जगह रहने वाले नहीं है, कोई कहाँ चल जाता, कोई कहाँ चलता था, पानी गिरता है बह जाता है, फिर कहीं इधर चला जाता है, कहीं से कोई उठाते हैं तो वैसे नहीं उठा तो वैसे ही वातावरण में घूम के कहीं से कहीं चले जाता है, इसका कोई ठिकाना है क्या, कोई परमाणु अब इधर है वो कब कहीं कहीं जाएगा, क्या ठिकाना है इसका, जब वर्तमान अवस्था को ही मात्र देखते हैं, मात्र वर्तमान अवस्था को जो देखते हैं उसको ज्ञान होता है। इसलिए अध्यात्म के ग्रंथों में ऐसी बात है कि तुम वर्तमान अवस्था को मत देख, वस्तु गते वस्तु विचारे सो मेरे लाज जो पदार्थ से टूटे वर्तमान अवस्था से
धर्मात्मा का वियोग होता है, धर्मात्मा का वियोग होता है तो कैसा लगता है जैसे जगत में अंधेरा छा गया हो, वियोग का दुख तो होता है,
धर्मात्मा का जो वियोग का दुख होता है उसमें दूसरा कारण है, और अपने जिसको ममत्व है ये मेरा है, मेरे परिवार का है, मेरा ऐसा शरीर लगता है, वैसे कोई दुख होता है वो अलग बात है, उसमें पाप बंधता है, उसमें पुण्य बंधता है। यह तो मैं एक ही सुख का कारण है, ठीक है प्रश्न चलता है तो विचार करें तो क्योंकि जो अपने परिवार का सदस्य कोई आयु पूरा करता है उनको जो दुख होता है उसमें कौन से भाव होते हैं, कौन से बंध होते हैं, कि उसमें पाप के केवल पाप के बंध होते हैं, पुण्य तो बिल्कुल नहीं होते हैं। और धर्मात्मा का आयु पूरा होता है और वो चले जाते हैं, और इसके इसका फिर जो प्रत्यक्ष लाभ था योग मिट गया और वियोग हो गया, तो वियोग हो गया उसमें कौन सा नुकसान हुआ, कि नुकसान ही हुआ कि मेरे धर्म प्राप्ति का एक निमित्त था, जो निमित्त बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ से भी अति दुर्लभ है, ऐसी कोई घटना घटी तो मैं धर्म से वंचित रहूंगा, इनके योग से वंचित रहूंगा, जिसके दर्शन मात्र से ही परिणाम बदल जाते हैं, ऐसा ही योग है। विदेश देवे धर्म की बात कहें नहीं कहें अलग चीज है, लेकिन दर्शन मात्र से ही परिणाम बदल जाते हैं मोक्षों के।
जीवन धर्म है, जीवन तो धर्म है,
जीवन तो धर्म है। तो ये दूर हो गए, इसका दुख होता है तो उसमें पुण्य लग गया, उसमें पाप बंद नहीं होता, लेकिन उसमें पुण्य बंद होता है। देखिए है तो कसाय शोक के परिणाम है, फिर भी वो कसाय है। तो कसाय तीव्र हो गए और पुण्य बंद हो सकता है क्या? कहाँ होता है, वहां भी होता है। ये प्रशस्त देश का परिणाम है। जैसे किसी धर्मात्मा का रक्षा करते हो तो गुस्सा आता है, प्रशस्त द्वेष है, तीव्र कषाय पुण्यबिंद होता है, वहां पाप नहीं होता है। हिंसा कर डाले तो भी पुण्यबिंद होता है, पाप नहीं होता है। ऐसे अपने अपने दोषों की निंदा ग्रह कर कषाय तीव्र होती है, आकुलता होती है, बहुत आकुलता होती है। अभी क्या तुझे अभी इतना परिणाम तेरे को होता है, क्यों होता है? ऐसे ऐसे परिणाम तुझे इतना होता है, बहुत दुखी होकर के अपनी निंदा करें। पुण्य बंध के परिणाम है, पाप बंध के परिणाम नहीं है। प्रशस्त द्वेष में जैसे प्रशस्त राग से पुण्य होता है, वैसे प्रशस्त द्वेष से भी पुण्य होता है। अप्रशस्त राग से जैसे पाप बनता है, वैसे अप्रशस्त द्वेष से भी पाप बनता है। ऐसे जो बनी है दोनों में उल्टी सुलटी बात है, एक में पाप बंद होता है, एक में पुण्यबंध होता है। संसार का संबंध तो स्वार्थ का होता है ना। जैसे कि जिस व्यक्ति से खास अपना तो स्वार्थ नहीं रहता है, वहां उसके चले जाने से उतना शोक भी नहीं होता है, पर जिससे अपना कोई सुख अनुकूलता आदि कुछ भी संबंध है, वो चले जाने से ज्यादा दुख होगा। तो बात स्मरण में आते रहेगी कि अब मेरा ऐसा कौन करेगा, अब मेरे ऐसे ऐसी कहाँ सुविधा कहाँ से मिलेगी, अब मुझे ऐसा कैसे होगा, ऐसा स्मरण आकर के दुख करता है, दुख दुख भोगता है, तो अधिक पाप बंद होता है। यही कारण है दोनों में काम करता है। लेकिन धर्मात्मा हो या अधर्मात्मा हो, यहाँ तो मुद्दा ये है कि मरण का समय निश्चित है, इसमें कोई आगे पीछे हो सकता नहीं। ऐसा होता है कि रोग बढ़ जावे और मृत्यु नहीं हो रही, पर जिस दिन मृत्यु हो गए उस दिन इनका स्वास्थ्य अच्छा हो गए और मृत्यु हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? अगर रोग से ही मृत्यु होती तो जिस दिन रोग बढ़ गया उस दिन उसका शरीर छूट जाना चाहिए था, जिस दिन तबियत ठीक है उस दिन वो देह त्याग करता है। इसका मतलब क्या कि इसने अपने समय पर यह होता है, रोग के कारण से होता
नहीं।
माता जी का देखा करेंगे, कभी कभी कैसे हम ले आए हैं शरीर को आई थी तो नहीं हुआ, डॉक्टरों ने बोल दिया हम उस दिन भी नहीं हुआ, और जिस दिन तो ठीक मालूम पड़ते हैं अपना समय हो गया, किसी को बोलने को भी नहीं है, मैं जाऊंगी ऐसी बात। शोक तो ममत्व के कारण होता है, लेकिन ममत्व ममत्व में भी फर्क हो सकता है। सांसारिक संबंध पाप बंधन के संबंध है, संसार के कोई संबंध पुण्य बंधन वाले नहीं है। बताइए कोई विचार करें, संसार के सभी बंधन पाप के संयोग में भी पाप और वियोग में भी पाप, एकांत पाप के ये संबंध है। देखिए हाँ, दूसरे एक बात धर्म में साधर्म बना आ गया, धर्मात्मा को हो गया और दृष्टि बदल गई,
सांसारिक दृष्टि बदल करके वो दृष्टि हो गई कि हमको आदरणीय है या तो ये परमात्मा है, दुर्बलता से होगी आपने परिवार में आकर के आना जाना नहीं रहा कि धर्मात्मा के लिए अपने घर में ही गंगा है, दूसरी बात होगी तो वहां सांसारिक संबंध नहीं रहा, वहां पाप बंध का कारण भी नहीं रहा।
तो घर में धर्मात्मा थे उसको ख्याल में नहीं है, अगर बाद में ऐसा ख्याल आ गया तो उस नियोग का भी कोई
तो भी पुण्य बंद होता है, तो भी पुण्य बंद होता है पाप बंद, क्योंकि वो पाप के निमित्त ही नहीं है, फिर पाप बंद कैसे होंगे? पाप के निमित्त नहीं होने से उससे पाप बंद नहीं होता, तो संसार का एक भी संबंध ऐसे नहीं है कि जिससे पाप बंद नहीं हो, उससे प्रेम करे तब भी पाप होता है, संयोग में और नियोग में दुख का परिणाम हो या शोक का परिणाम हो तब भी पाप बंद होता है, वहां तो एक लाभ पाप बंद का ही प्रसंग बनता है, दूसरा प्रसंग नहीं बनता। यहाँ पे जो बात है वो धर्मात्मा की नहीं है, यहाँ तो अनित्य बनता तो मैंने अपने अपने संबंध ही अनित्य है, संसार के सभी संबंध अपने अनित्य ही है, तुम शोक मत करो।
अकाल मृत्यु फिर क्या चाहिए? अकाल मृत्यु होती है,
अकाल मृत्यु एक कहने की चीज है, औपचारिक बात है, वचन ही औपचारिक है। अकाल मृत्यु का यही मतलब है कि वैसे व्यवहारिक तौर से देखा जाए तो मृत्यु होने लायक परिस्थिति नहीं थी, फिर भी मृत्यु हो गई, तो उसको अकाल मृत्यु कहने में आई है, लेकिन वो ही समय निश्चित था, उसी प्रकार से मरने का निश्चित था, लेकिन संसारी लोगों की निगाह में ये अकाल है, ज्ञानियों की और केवले सर्वज्ञ की निगाह में ना ज्ञान में वो अकाल है ही नहीं, वो तो अकाल से ही देखते हैं। और ये बात रही बाह्य दृष्टि से, कर्म के विषय में आयु कर्म के विषय में ऐसा होता है कि आयु कर्म के जो निश्चित मूल्य में आते हैं वो जिस स्पीड से आते हैं, जिस गति से वो आते हैं और आयु भोगा जाता है, उस गति से अगर वो भोगता तो काफी लंबा काल तक आयु चलता है, आयु कर्म का उदय चालू रहता है। लेकिन कुछ ऐसे मृत्यु होते हैं कि जिसमें पिछले अंतर्मुख में ये आयु कर्म के परमाणु एकदम तेजी से मूल्य में आ जाते हैं, उसका स्थिति का आकर्षण होकर के एकदम तेजी से आकर के ये पूरा का पूरा उदय हो जाता है, तो बैलेंस परमाणु में आयु के आयु कर्म के, तो उसको भी अकाल कहने में आता है, ऐसा भी कभी बनता है तो उसको भी अकाल मृत्यु हुआ ऐसा कहने में, लेकिन वो निश्चित नहीं था, वैसा प्रकार बनने का कोई निश्चित नहीं था और बन गया ऐसा नहीं है, वो जब ही बंधा तो परमाणु परमाणु का उदय आने का समय निश्चित था, जो पिछले वाला प्रदेश मैंने जत्था समूह तो एकदम तेजी से उदय में आ गया तो उसकी स्थिति भी वैसे ही निश्चित थी, लेकिन गिनती के हम सोचे कि जिस ढंग से उसका वो चालू था वो उसी ढंग से चालू रहता तो बहुत काल निकलता, मृत्यु नहीं होती, लेकिन ऐसा तो होने वाला ही नहीं था, मैंने प्रदेश अधिक थे लेकिन स्थिति अधिक नहीं थी, शास्त्र परिभाषा में क्या कहेंगे कि इस आयु कर्म की प्रकृति के प्रदेश तो ज्यादा थे लेकिन इसकी स्थिति ज्यादा नहीं थी, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुमान आते हैं वैसे ऐसा भी बन सकता है, बात है तो अकाल मृत्यु ही, लेकिन किसी की मृत्यु अकाल होती ही नहीं, ये सिद्धांत है, ये नियम है कि किसी की मृत्यु अकाल में हो ही नहीं सकती।
हजारों लाखों जीवों का एक समय में घात होता है, लड़ाई वगैरह सबके आयु वर्ग एक समय में शेष होते हैं।
मेल खाता है जिसको अपन एक क्षेत्र में देखते हैं तब अपने को ये प्रश्न होता है, अलग अलग क्षेत्र में तो होता ही है हमेशा। कौन सा समय बाकी है कि जिसमें एक साथ अनेक जीवों के आयु खत्म नहीं होती है, ऐसा कौन सा समय है? कोई ऐसा समय नहीं है कि प्रति समय एक साथ बहुत से जीवों का आयु पूर्ण होता है।
एक निमित्त से
उसमें एक निमित्त से एक क्षेत्र से होता है, जैसे बम्बार्डिंग हुआ तो एक साथ हजारों मनुष्य मर गए, तो ये प्रश्न खड़ा होता है ऐसा कैसे? ऐसे भी बंध होते हैं जैसे कि ऐसे ही काल में होते हैं, जब ऐसा प्रसंग बनता है ना वैसे ही काल में होता है। एक बम्बार्डिंग हुआ तो एक देश में कहीं विश्व में बम्बार्डिंग हुआ और इसका अनाउंसमेंट एक ही साथ बीबीसी ने बोल दिया कि आज शाम को इतने बजे ये चाइना ने वहां या रूस ने वहां बम फेंका, इतने लोग मर गए, उनको मानो के इराक पर फेंक दिया। अभी वर्तमान परिस्थिति का देखिए, सदाम हुसैन किसी का मानता नहीं था तो ये काम चीन वालों ने कर दिया या रूस वालों ने कर दिया, अमेरिका वालों ने कर दिया, इतने लोग मर गए। तो शाम को तो यार तो बम फोंके और घंटे बाद घंटे बाद अनाउंसमेंट हो जाए किसी रेडियो स्टेशन से, और बहुत से सुनने वाले होते हैं तो सुनते ही अच्छा हुआ साले को मार दिया, ये तो ऐसा ही होना चाहिए था। क्या होता है सारी दुनिया को परेशान करता था आदमी, तो उसको तो वहां बंबाई हो गया, वही अच्छा हो गया। एक साथ कितने परिणाम करेंगे? जो भी सुनेंगे देश प्रदेश में सारी दुनिया में या दूसरे दिन पेपर में अखबार में आ जाएगा, हम तो रात को 3 बजे हुआ 5 बजे हुआ अखबार में आ गए, जगत ही सुबह होते ही सबको पता चलता है। एक साथ समय के परिणाम होते कि नहीं होते? परिणाम होने का समय एक होते हैं, एक से परिणाम होते हैं, एक प्रकार से होते हैं, एक ही निमित्त से होते हैं, ऐसे ऐसे प्रकार बनते हैं। तो उस वक्त जिनकी जिनकी जो आयु होती है उनकी वैसी परिस्थिति होती है, तो एक साथ तो ऐसा नया प्रसंग भी बनता है, एक साथ मरे सब वैसे बनता है, बहुत सी घटनाएं बनती है। तो जिसका मेल देखते ही आश्चर्य होता है कि ये कैसा मेल है, कार का बैठना और पेड़ का पढ़ना कभी बन सकता है क्या? कौवा के वजन से कोई डाली पड़ सकती है, लेकिन वो पढ़ने लायक थी और वो बैठा इसमें कहीं जुलने लगी, तो उसका खुद का वजन ही इतना था, कौवा का इतना नहीं था, डाली का अपना वजन ही इतना था कि उसको ऐसे हिलने से तो वहां टिक नहीं सकता।
भूकंप आता है, बाढ़ आती है,
भूकंप आता है, बाढ़ आती है, एक मिनट से बहुत एक साथ छुट जाते हैं, प्लेन क्रैश होता है, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, होता है। वो तो मनुष्य का है इसलिए अपने को लगता है, लेकिन प्राणियों का तो बहुत होता है। जैसे एक गोबर का पड़ा है बड़ा, तो बहुत कीड़े होंगे, कोई हाथी चलता है या कोई वाहन चलता है, ट्रक चलती है, एक साथ मर जाते हैं, एक साथ आए फिर छोटा कभी गिरेगा। प्राणी को तो अपन ज्यादा नहीं देखते, मनुष्य की बात तो अपन मनुष्य है ना, इसलिए दृष्टि ऐसी रहती है, ऐसा भी मनुष्य में होता है। प्राणी में तो बहुत छोटे छोटे जीवों में तो ऐसा बहुत मिलता है।
उनमें तो उनकी बात है तो उनका तो हर समय ही होता ही रहता है,
एक ही निमित्त से मरे, एक ही क्षेत्र में मरे हैं, अलग अलग निमित्त से अलग अलग क्षेत्र में मरने का तो प्रति समय चालू ही है। तो ऐसा समय नहीं है कि इसमें प्राणियों का आयु पूरी नहीं होती है, ऐसा कोई समय नहीं है, और नया जन्म होता है, ऐसा बात ऐसा भी कोई समय नहीं है। एक साथ जन्मते हैं, एक साथ मरते भी हैं।
जैसे भूकंप की, बाढ़ की, ट्रेन एक्सीडेंट की, प्लेन एक्सीडेंट की, जैसी अस्थिरता तो प्रत्यक्ष देखने में
आता है। ऐसा बन रहा है, ऐसा आयुष ऐसा ही लेकर के सब आए थे। इसलिए कहते कोई कहाँ से बैठा, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से बैठ जाता है, कोई कहाँ से बैठता है। लेकिन उन्होंने अनुबंध ऐसा किया था, साथ में मरने का, एक ही जमीन से मरने का, एक ही क्षेत्र में मरने का। और इसमें भी कोई जिंदा रहता है, ऐसा नहीं कि सबके सब मरते हैं। किसी का समय आगे पीछे है तो हॉस्पिटल में जाके मरते हैं, तो कोई बच जाते हैं, तो बाद में जब आयु पूर्ण होती है तो मरते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सबको मरना ही है, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा बोले ये बचा ही ऐसा, वो नहीं बचना चाहिए तो दूसरा बचने चाहिए था, लेकिन वो बचा नहीं। ऐसा भी आता है कि नहीं आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनका समय नहीं था। जो मरने लायक था ऐसी जगह पे बैठा था, उस तरह से बैठा था, वो नहीं मरा। और जो नहीं मरने लायक था उसी जगह पे मर गया। इसका मतलब क्या हो, इनका समय पूरा हुआ था, इनका नहीं पूरा हुआ था।
ये अनित्यता सामने प्रकट देखने में आती है, फिर भी उस तरफ सावधानी नहीं है।
इसको क्या होता है, थर्ड पर्सन हो जाता है कि वो मरा, मैं थोड़ा मरा मरा तो
जिस प्रकार पक्षी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चले जाते हैं, तथा जिस प्रकार भौंरा एक फूल से दूसरे फूल पर उड़कर चले जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार में अपने अपने कर्म के रूप से जीव निरंतर एक गति से दूसरी गति में चले जाते हैं। इस प्रकार प्राणियों की अनित्यता को समझकर विद्वान मैंने ज्ञानी न तो प्राय प्राणियों की उत्पत्ति में हर्ष ही मानता है और न उनके मरने पर शोक ही करता है। आगे वृक्ष का दृष्टांत दिया था, कोई कहाँ से आता है और कोई कहाँ चला जाता है। यहाँ गति की बात ले लिया है कि एक गति में से दूसरी गति में जाना होता है। तो पक्ष का एक वृक्ष से मुड़ करके दूसरे पक्ष पर बैठ जाने की बात है। अभी इधर आया उधर जाएगा, वो भी निश्चित है। उनका जाना आना अपने कर्म के हिसाब से, कर्म के अनुसार भी होता है, दूसरे प्रकार से नहीं होता। दोनों बातें हैं, उत्पत्ति भी उसी प्रकार से है, क्योंकि एक फूल से बैठकर घोड़ा दूसरे फूल पर बैठता है, ऐसे ही उत्पत्ति होती है। और जगह एक जगह से नाश बोला जाता है, दूसरी जगह से उत्पत्ति होती है। यहाँ शोक करते हैं, जैसे कोई नेक गति में जाते हैं, जैसे यहाँ तो शोकान्वित होते हैं, उनके जो परिवार के हैं संबंधी लोग जिसमें उसके राग है, वो राग पलट कर संयोग का राग पलट कर वियोग में द्वेष धारण कर लेता है। नियम से द्वेष का जो दुख है वो राग के कारण से है। जिसको राग नहीं है उसको तो होगा नहीं, दूसरों को भी पता तो चलेगा, पेपर में भी पड़ेगा। लेकिन क्या है, फोटो के सही देख लेंगे तो फलाना फलाना है। जिसको राग नहीं है उसको तो एक समाचार होता है और कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। जान पहचान वाला होता है, अपने बाजार के होते हैं, अपने गांव के होते हैं, फोटो आते हैं, ठीक है, हाँ ऐसा हो गया क्या, ठीक है सर बात कर जान लिया। जिसको राग हुआ है उसको द्वेष आए बिना रहेगा नहीं, दुख लगे बिना रहेगा, यहाँ तो वो लोग दुखी होंगे जिन 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 लोग राग किया वो यहाँ तो दुखी होंगे, और जहाँ वो देवलोक में उत्पत्ति होगा वहाँ वहाँ तो उसका स्वागत समारोह चलता है बहुत बड़ी खुशी से, वहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं, इतनी खुशी होती है जो उनको देवियाँ होती है। तो देखे स्वामीनाथ था कैसे पुण्य करके यहाँ पधारे, हम तो समझ नहीं सकते कि आपके कितने बड़े पुण्य हैं। वहाँ तो कुमार अवस्था में युवा अवस्था में ही कर रहे होते हैं, वहाँ तो बचपन तो होता है न वृद्धावस्था है, ये तो बहुत खुशियाँ मनाई जाती है। इधर से बोलते हैं वहाँ खुशियाँ मनाते हैं, देखो क्या ताल है इस संसार का एक ही दिन में इनकी परिस्थिति बदली है,
एक ही समय में एक ही समय में असर
उधर दो समय में उधर शोक होता है उसी समय में उधर हर्ष होता है, तो ये कौन सी बात ठीक है बताइए। ज्ञान कहते कि दोनों में से एक बात भी ठीक नहीं है, दोनों में से एक ही ठीक नहीं है, ये दोनों वर्तमान अवस्था मात्र को देखते हैं आगे पीछे वाली बात को देखते। इसलिए आचार्य सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है, इस पसंद के जितने पहलु हैं उन पर प्रकाश डाला है, उनका ये तात्पर्य रखा है कि अनित्य को अनित्य देखो, नित्य को नित्य देखो, अनित्य को अनित्य देखने से दुख नहीं होगा, ये सही ज्ञान है। सिद्धांत ये निकलता है कि ज्ञान सच्चा होने पर, ज्ञान सही होने पर प्राणी को अपने जीवन में दुख नहीं होता। अगर हमें दुखी नहीं होना है मतलब सुखी होना है तो सच्चा ज्ञान करना है, ये सिद्धांत इसमें से निकलता है कि नहीं। ज्ञान सच्चा होने से प्रसंग किसी भी प्रकार का बनेगा हमारा सुख है वो तो दुख में नहीं पलटेगा, हमारा सुख सुखी रहेगा। ज्ञान में भूल है, समझ में भूल है तो दुख नहीं चाहिए, फिर भी वे बिना रहेगा नहीं। दुख तो चाहते नहीं किसी को भी, दुख ही दुख ही चाहना तो होती नहीं, होती नहीं फिर भी होता है, इसका क्या कारण है? नहीं चाहते हुए भी बलात्कार दुख को भोगना पड़ता है, अज्ञान के सिवा दुख की जड़ कोई नहीं, ये सिद्धांत है। तीनों काल में ये अबाधित सिद्धांत है कि दुख का कारण अज्ञान ही है, इसलिए जब जब हमारी अवस्था में हमारे पर्याय में दुख की उत्पत्ति हो उस काल में हमें ये सोचना है कि किस प्रकार से अज्ञान से ये चलाया, मेरा अज्ञान कौन सा है, किस प्रकार का है, कैसा है, जिससे मुझे दुख हो रहा है। बस थोड़ा भी इसको सब बात को विस्मृत हो जाती है, इसलिए स्मृति में आने लगे कि सब बात जो सुनी है विचार किया है वो बात सब वैसे ही उपस्थित हो जाएगी, इस सिद्धांत के माध्यम से ये बात उपस्थित हो जाएगी। इस प्रकार के मेरे भूल है समझ में, इसलिए मुझे अज्ञान, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। अगर सही परिस्थिति समझे तो विश्व में दुख का कोई कारण ही नहीं है। जैसे ऐसा बोलने में आता है कि संसार में दुख ही दुख है, इसका कारण यह है कि संसार में प्राणी अज्ञानी ही अज्ञानी होते हैं, वास्तव में संसार में दुख का कारण कोई है ही नहीं, दुख का कोई निमित्त है अगर ज्ञान से सम्यक ज्ञान से देखा जाए तो सम्यक ज्ञान सुख का कारण है, अज्ञान दुख का कारण है। ये बात हुई बात कहाँ से काम करती है। शोक नहीं करना इसका मतलब क्या है? उपदेश में ये बात आई कि तुम शोक नहीं करना है, इसका मतलब क्या है? कि तुम्हें अज्ञान नहीं होना चाहिए। अज्ञान होने से ही दुख होता है, ज्ञान होने से दुख होने वाला नहीं।
शोक नहीं करने की बात करते हैं, शोक होने में जो अज्ञान निमित्त है उस अज्ञान को हटाने की बात है।
हाँ, मूल से दुख का मूल पकड़ कर से जड़ पकड़ करके जड़ से निकाल दो। ये तो जैन दर्शन की शैली है। तो बात क्यों में रख देते हैं? बात क्यों में? राग से पदार्थ अच्छा लगता है और पदार्थ में एकत्व होता है, देह में एकत्व होता है। तुम देह का राग छोड़ो, देह में दुख होने का राग होने का, राग का एकत्व छोड़ दो, देह में एकत्व छूट जाए, राग के विषय में एकत्व छूट जाए। इसलिए भेद ज्ञान राग से करवाया है। यही कारण है कि भेद ज्ञान राग से क्यों, देह से क्यों नहीं? कि देह से करोगे तो राग से किए बिना ये देह से तो होगा नहीं। और देह से मानो कि भेद ज्ञान किया और राग से रह गया तो भी वो परिस्थिति हो जाएगी। ये तो होता ही नहीं, ये तो तर्क है। लेकिन राग से भेद ज्ञान करने से राग के जितने जितने विषय है, देह और ऐसे भी पंचेंद्रिय के विषय होते, जितने जितने भी विषय हैं सबसे एकत्र छुट जाएगा। राग से एकत्र रिश्ता छुटा, राग के विषय में जितने भी संसार के पदार्थ हैं इसमें सबसे एकत्र छुट जाएगा एक ही साथ। इसके लिए कोई दूसरा प्रयास और प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा कि हम राग में राग से एकत्र छोड़ा है और दूसरा पदार्थों से एकत्र छोड़ना बाकी है, वो बात रहने वाली है।
मूल में कैंची लगा दी,
मूल में कैंची लगा दी, आगे की बात ऑटोमेटिक साफ। ये तो वैज्ञानिक पद्धति है जैन दर्शन के प्रक्रिया। दूसरे धर्म के फिलोसॉफी में, ज्ञान में और जैन दर्शन के ज्ञान में तो बड़ा अंतर है। इसलिए भी है कि वस्तु के विज्ञान को देखते हैं तो मूल कहाँ है वो पकड़ लेते हैं। जैसे रोग में ऐसे पति है नहीं यार, ये पति है जो एलोपैथी में नहीं है, आयुर्वेद में है। रूट कॉज में जाते हैं, वो ताव को ताव आने से ताव को ताव का इंजेक्शन नहीं देते। ताव काय से आया, सर्दी से आया, गर्मी से आया, कोई दूसरा कारण, कोई दूसरा कारण, उसको मिटाते हैं, उसको रूट में जाते हैं। ये पद्धति जैन दर्शन की है, मूल में जाता है, रोग को मूल में से साफ करता है। इसलिए अध्यात्म शास्त्र में आत्मस्वभाव को विभाव का क्षय करणशील कहा है। क्या नाम दिया? आत्मस्वभाव है वो विभाव का क्षय करणशील है। विभाव का क्षय करने का जिसका स्वभाव ही ऐसा है, ऐसा बता
दीजिए। ऐसा स्वीकार करने पर विभाव क्षय हो जाता है, ऐसा स्वीकार करने पर विभाव क्षय हो जाता
है। स्वभाव का स्वीकार भी विभाव का नाश करने का इलाज है, ये मार्ग है।
માટે આત્મા ને દેહ જુદા છે એમ કહેવાય તો રાગ ને જ્ઞાન જુદા છે,
રાગ ને જ્ઞાન જુદા છે ત્યાંથી પ્રયત્ન શરૂ કરવાનો છે। દેહ ને આત્મા જુદા છે ત્યાંથી પ્રયત્ન શરૂ કરવાની જરૂર નથી, પ્રયત્ન અહીંથી કરવો। અને વિજ્ઞાન એ રીતે જ કરાયું છે. વિજ્ઞાનનો ઉદ્દેશ એ જ વાત છે. વાત બે આવે છે એટલે લોકો નથી સમજતા કે આનો ક્રમ શું છે. શું જો ક્રમ તો નહીં સમજતે તો કંઈ છે બી ચાલુ કરના શરૂ કરી દે તે એટલે સફળતા નહીં મળી. ક્રમ તો જાણે તો સફળતા નહીં મળી. बोले कि जो विज्ञान तीन प्रकार का है, जड़ से, देह से, उद्गल से, आत्मा भिन्न है, मैंने पर पढ़ा राग से भी आत्मा भिन्न है और एक समय की अनित्य पर्याय से भी आत्मा भिन्न है. ये तो राग देह से तो राग की बात है और राग से भी एक समय के पर्याय की बात है. उसमें उत्तर उत्तर उसकी कोटि भी सूक्ष्म और ऊंची प्रकार की है. तो हमसे तो हम तो एक समय के पर्याय से ही भिन्नता कर ले रहे. मैंने उत्तर की कोटि से कोई हम तो पकड़े मैंने हम तो ऊंचे माल के खरीदार हैं. क्या
ऐसा भाव पड़ा
हम माल लेने को जाते हैं तो कभी भी हमारे जो पसंदगी है ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड की नहीं रहती. सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड होता है वही चीज को हम पकड़ते हैं उसको ही खरीदते हैं. तो अध्यात्म में भी हमारी यही स्थिति है कि हम तो ऊंचे से ऊंची बात को पकड़ेंगे नीचे वाली बात को हम छूटे नहीं. तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है. क्रम जहां से होता है वैज्ञानिक तौर से कहां से काम किया जाता है उसको समझना जरूरी है. उसको समझना चाहिए और वहां से काम करे तो सफलता मिले. मार्ग दो प्रकार का नहीं होता. मार्ग में इलाज दो प्रकार का नहीं होता. किन काल में परमार्थ का पंथ तो एक ही होता है.
बीमारी में मिठाई खाने जैसी बात है. बीमारी में मिठाई खाने जैसी बात है.
बीमार हो गए हो बहुत अशक्ति आ गई हो तो उसको सालन पान देने के नहीं दे रहे या उसको मैसो खिलाने के नहीं खिला रहे लड्डू खिलाने के नहीं खिला रहे और उसमें बादाम काजू डाल डाल करके भारी होता है मतलब ड्राई फ्रूट डाल के बराबर मर जाएगा. क्या होगा मर जाएगा. शक्ति तो नहीं आएगी अशक्ति तो नहीं जाएगी लेकिन बात ही पूरी हो जाएगी. इसलिए ऊंची चीज खाने लायक है पर लेकिन कब कि हजम होने की शक्ति हो गए जब तक आता है ना शास्त्र में एक चक्रवर्ती का जो आहार होता है उसमें हीरे मोती की भस्में होती है. उसको कोई बहुत लड़ाई में भी उससे हार जाता है इसका क्या कारण है. उसको खुराक उसका सहनन सब ऐसा ही होता है. तो इसका एक कवल भी 96,000 पायदल जो इनके हैं उनके मिला जाए करके लग जाए सबको मर जाओ. उनको तो डायरिया हो करके मिटे ही नहीं मजम नहीं उसे. खुराक तो बहुत शक्ति वाली है लेकिन खुराक खाने वाला भी तो चाहिए. वैसे बहुत सी बातें ऐसी है ऊंची से ऊंची है लेकिन इस लायक हमें होना चाहिए. हमारी अवस्था इसके लायक होनी चाहिए. इसलिए सत्पुरुष की बात कहते हैं कृपा कि तुझे कौन सी चीज खानी है वो तुझे पता नहीं है. उपदेश तो बहुत सा है शास्त्र में लेकिन कौन बात कब तुझे अंगीकार करनी है तुझे कहाँ पता है. तो ये कहेगा कि ये बहुत ऊंची बात है हमको तो वो चाहिए लेकिन तुम्हारे तो ये बात लेने की योग्यता नहीं है. इसीलिए ये उपदेश बोध और सिद्धांत बोध का क्रम पत्रों में ऐसी बात आई है, जो शास्त्रों में आती है पद्धति की बात वो पत्रों में आई
शास्त्री शास्त्री है।
हाँ शास्त्री पत्र नहीं है किंतु शास्त्र भी है, शास्त्र है कर्मागम है जिनको हित होने के लिए, तो परम आगम आगम और परम आगम दो भेद हैं। ये 19 गाथा
नवंबर के लिए होता है, इतना नवंबर के लिए होता है कि हम क्या है, हमको क्या जरूरत है, क्या
तैयार होके नहीं आ रहे, लेने तो आते हैं लेकिन तैयार होके नहीं आ रहे, तो क्या हाल प्रोविजन स्टोर पर भी ऐसा नहीं जाते, प्रोविजन स्टोर पर ऐसे जाते पहले घर पे लिस्ट बना लेते, ये भी तो आइटम होने तो लिस्ट नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन मेहमान आने वाले हों हम दो चार सब्जियाँ सब्जी में डालने के लिए दो चार और मसाले कोथमीर लाओ मिर्च लाओ नींबू लाओ 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 आठ दस आइटम तो वो आ जाए, फिर जा रहे हमारे ब्राह्मण में अंडी बखार कहते हैं क्या इतना किराने की सब चीज मिलती है, भोजन स्टोर में चले जाए वहाँ से पाँच दस चीज लाना, एक भी भूल नहीं जा रहे, 10-15 आइटम हो गए तो ये रह नहीं जा रहे हैं और हमारे रसोई क्षति वाली इंफीरियर क्वालिटी की नहीं हो जा रही तो लिस्ट करके जाता है, ऐसे ऐसे बोल उतनी चाहिए वो उतनी चाहिए वो उतनी चाहिए, इसका भी प्रमाण है। वहां तो व्यवस्थित काम करते हैं, इधर व्यवस्थित नहीं करे तो कैसे चले, जहाँ मामूली प्रसंग है दो आदमी को चार आदमी को जिमाने का वहां भी अपने कितने व्यवस्थित हो जाते हैं, व्यवस्थित क्या इस काम के लिए थोड़ा टेंशन भी होल लेते हैं टेंशन आता है कि नहीं आता, आज तो चार मेहमान आने वाले इसमें हमारे जवान भी है कुंवर साहब भी है और हमारे बेवाई भी है, नहीं चलेगा जैसी तैसी बात नहीं चलने वाली है, प्रेस्टीज का सवाल है, जिमाने का सवाल नहीं है लेकिन हमारे प्रेस्टीज का सवाल है, टेंशन आता है थोड़ी देर के लिए तो टेंशन आ जाता है, मामूली प्रसंग में उतना गंभीरता मतलब उतनी गंभीरता लेता है, ये तो शाश्वत हित का विषय है, कितना सीरियस होना चाहिए इस विषय में, कितनी गंभीरता कि कहीं भी हम थोड़ी भी भूल नहीं करें, हमारी भूल कहीं नहीं हो, देर सवेर हो कोई बात नहीं है, भूल और भ्रांति नहीं हो, दरकार सावधानी बहुत आनी चाहिए। ब्राह्मित कालम अनंतम अत्र जनने प्राप्तो प्राप्नोति जीवो न मानुषं निर्दुष्कुले तदवतः प्राप्तं पुनर्विद्यते संजातावत् तत्र याति विलयं गर्भेपि जन्मन्यपि नराग बाल्येपि ततोपि नो वर्षा अर्थ है अनंत काल पर्यंत इस संसार में भ्रमण करते हुए इस जीव को मनुष्य पने की प्राप्ति हुए ही हुए ऐसा कोई निश्चय नहीं, पर नहीं भी होती अनंत काल तक नहीं भी होती, बात लेकर के आचार्य महाराज मनुष्य गति पर आते हैं, संसार और गति की बात नहीं, कोई कहाँ चला जाता है कोई कहाँ चला जाता है, तो मनुष्य की प्राप्ति की दुर्लभता देते हैं। अनंत काल पर्यंत इस संसार में भ्रमण करते हुए इस जीव को मनुष्य की प्राप्ति होवे ही होवे ऐसा कोई निश्चय नहीं है। जिस पर्याय में हम गुजर रहे हैं ये पर्याय बहुत कीमती है। ऐसा अनंत काल में भी नहीं आती है, आवे ही ऐसा कोई नहीं, अनंत काल तक नहीं भी आवे ऐसा भी हो सकता है। दैव योग से, क्योंकि अपनी तो बुद्धि नहीं है, कैसे हमने मनुष्य पर्याय की प्राप्ति की, ऐसी कोई बुद्धि हुई, बुद्धिपूर्वक कोई बात सोची हुई नहीं, इसलिए कहते हैं कि दैव योग से मैंने ऐसे सद्भाग्य से, दैव योग से मैंने ऐसे कोई सद्भाग्य से, यदि वो भी जावे, मनुष्यपना हो भी जावे, उतना सद्भाग्य हो कि मनुष्य गति में आवे, लेकिन खोटे कुल में जन्म लेने पर फिर भी वह पाया हुआ मनुष्य मनुष्यपना उस खोटे कुल में किए हुए पापों से नष्ट हो जाता है। जैन कुल में कितने हैं आबादी देखो, हिंदुस्तान के देखो, वार तो कुछ है ही नहीं, क्या परिस्थिति है। तो खोटे कुल में बहुत से मनुष्य तो खोटे कुल में आ जाता है, ना इस बात को सुनना, को सुनने का भी कोई अवसर प्रसंग भी नहीं मिले। दैवी योग से भी मनुष्य पने की प्राप्ति होवे तो भी खोटे कुल में जन्म लेने पर फिर भी वो पाया हुआ मनुष्यपना उस खोटे कुल में किए हुए पापों से नष्ट होकर फिर मनुष्य बना नहीं आता है। इतना इस प्रकार का वो पाप करता है, चला जाता है तीन गति में, फिर वहां से और दो गति में चला जाता है। तीन गति में क्या है कि परिणाम ही ऐसे, जैसे ये चिड़िया हैं, कबूतर हैं, वो तो हिंसक प्राणी भी माना गया, लेकिन वो भी हिंसा से ही पेड़ करते, छोटे छोटे जीव जान को खाते रहते हैं, पर उसके आजीविका ही ऐसे चलती, उसके बिना उसके आजीविका नहीं चलती, जीवन नहीं चलता। मैंने जो उसके परिणाम की पोजीशन को हम देखें, तो जैसे कोई मरने वाला का मृत्यु के नजदीक जाने वाला मरीज है, दर्दी, उसका हेल्थ जो है